तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जब यानी नकद का मामला मैं आपको बताना चाह रही थी कि उसके ऊपर फिर कोई गवाह या लिखत पढ़त की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला हमें ये आयात सीखने की, समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे अंदर तकवा पैदा फरमा दे।
لله ما في السماوات وما في الأرض، لیے اللہ ہی کے ہے جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے۔ پہلا لفظ ہی بہت کمپریہنسو ہے، للہ، لیے اللہ ہی کے ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے کا مطلب کیا؟ کہ سب چیزوں کی ملکیت، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور پوری سورت کا بھی یہی میسج ہے، للہ، لیے اللہ کے۔ تو سب چیز جب اللہ ہی کے لیے ہے، سب چیز اللہ ہی کے غلام ہے، تو تم بھی اللہ کے ہو جاؤ۔ للہیت کا ایک میسج ہے نا یہ۔ تو جب ہم للہ کہتے ہیں نا، تو اس میں دیکھیں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر ون، ملکیت بھی آ جاتی ہے، اختیار بھی آ جاتا ہے کہ اتھارٹی بھی پوری اللہ کی ہے، اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں کس میں آ گئیں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ آسمان کی طرف دیکھ لو اور زمین کی طرف دیکھو، ہر چیز اس کا مالک اللہ ہے، اور ایبسلیوٹ مالک ہے۔ اب دیکھیں، جو مالک ہے ہر چیز کا، تو اس کا مطلب باقی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر صرف وہی مالک ہے نا، تو پھر باقی ہر چیز کیا ہے؟ جو بھی چیز ہوگی وہ ود ان آسمان اور زمین ہی ہوگی نا، اور باہر تو نہیں اس سے کچھ ہو سکتی۔ تو پھر وہ کیا ہے ہر چیز؟ کیا وہ خدا ہو سکتی ہے؟ اگر ان کا کوئی مالک ہے، تو اس کا مطلب وہ سب چیزیں مخلوق ہیں، سب چیزیں غلام ہیں، پھر اللہ کا کوئی شریک تو نہیں ہو سکتا، کوئی اور خدا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں توحید کا بھی میسج ہے کہ سب چیزیں اس کی ہیں، تو پھر جو مالک ہوگا وہ سوچیں اس کے غلام اس کے ساتھ شریک تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ تو سارا اختیار اس کا ہے، سارا اقتدار اس کا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے، اور ستاروں سیاروں کا سب کا وہ مالک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں، جب آپ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہتی ہیں، تو ذرا تھوڑی سی اپنی سوچ کو براڈ کریں اور سوچیں کیا کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اوپر رب ہے، اور اس کے نیچے سب اس کے غلام ہیں۔ کیا کیا چیز غلام ہے اس کی؟ آنکھ اٹھاؤ، دیکھو آسمان غلام ہے، دیکھو سارے گیلیکسیز جتنی بھی ہیں سب غلام ہیں، دیکھو سارے سسٹمز جتنے چل رہے ہیں سب غلام ہیں، دیکھو جتنے ستارے سیارے ہیں سب غلام ہیں۔ وہاں پہ کس کا آرڈر چل رہا ہے؟ آسمانوں میں کس کا آرڈر چل رہا ہے؟ زمین کی ہر شے میں۔ اب ہر گیلیکسی میں جتنے ستارے سیارے ہیں وہ بھی اسی کے غلام ہیں، ان کے اوپر اس کا ہی فیصلہ چلتا ہے، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز پکار رہی ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم حکم کے پابند ہیں۔ کیسے کیسے پکار رہی ہے؟ دیکھ لیں، کوئی چیز اپنے مقام سے ہٹتی نہیں ہے، ہلتی نہیں ہے، تو غلام ہی ہے نا جو ایک سسٹم میں بندھے ہوئے ہیں، ورنہ ہر کوئی اپنی مرضیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے فلک کے اندر اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے۔ کس کے حکم سے تیر رہا ہے؟ جس کا حکم اس کے اوپر چل رہا ہے وہی اس کا مالک ہے۔ آسمان اس کے ہیں، آسمان والے بھی اس کے ہیں۔ آسمان میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوں۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی آسمان اور زمین کے اندر ایک میں اور آپ بھی تو ہیں نا، چھوٹے سے شاید کیڑے مکوڑے کے برابر بھی نہ ہوں اس کائنات کے مقابلے میں۔ جب ہر چیز اس کی ہے، تو میں اور آپ بھی اس کے ہیں، اور جب میں اور آپ اس کے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر بھی کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اس اللہ کا۔ देखें इंसान की आंख उठती है या झुकती है, नीचे नजरें करके देख लो या ऊपर नजरें उठा के देख लो, चाहे गहरे समुंदर हों, चाहे पहाड़ हों, चाहे हवाएं हों, फिजाएं हों, दरख्त का पत्ता पत्ता हो, पौधे हों, फल हों, सब्जियां हों, परिंदे जानवर कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी है किसका? लिल्लाही है। लेकिन जब इंसान इसी सबक को भूल जाता है ना कि मैं भी अल्लाह का हूं, तो तब इंसान के अंदर एक खला पैदा हो जाता है, एक वैक्यूम आ जाता है, इसको अल्लाह की जात के सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह दिल में आएगा ना तो फिर इंसान जो है उस जैसे कंप्लीट हो जाता है, उसकी रूह जब अल्लाह से जुड़ जाती है, क्योंकि ये रूह अल्लाह की है, ये जिस्म अल्लाह का है। देखिए जिस्म किसके कहने पे चल रहा है? आप कहेंगे नहीं हमारा तो अपना ही कहना चलता है, नहीं ऐसा नहीं है। दिल किसके कहने पे धड़क रहा है? ब्लड किसकी मर्जी से सर्कुलेट कर रहा है? हमारी अकल किसके हुक्म के ऊपर काम कर रही है? आंख किसके कहने पे चलती है? जो देख रही है किसके कहने पे देख रही है? दिल की धड़कनें रुकने लगे तो आप चला के दिखा दें, दिल पुकारेगा मैं अल्लाह का हूं। आंखें अंधी हो जाएं तो आप उनको देखने वाला बना के दिखा दें, आंख कहेगी नहीं मैं अल्लाह की गुलाम हूं। तो हर चीज, चाहे हमारे अपने जिस्म के अंदर है, चाहे इस कायनात में, हर चीज का मालिक वो ही है और हर चीज उसकी फरमा बरदार है, हर चीज उसके सामने झुकी हुई है। तो सारी कायनात हमें, मुझे और आपको क्या मैसेज दे रही है बताएं? कि तुमको भी झुक जाना, तुम्हें भी अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर देना। जब मौत आएगी तो तब तो इंसान झुकेगा ही झुकेगा, लेकिन मौत से पहले ये करके दिखाओ, इसी के ऊपर तो जन्नत मिलनी है कि हम अपना इख्तियार अपना इरादा सब अल्लाह के आगे झुका दें। तो जो भी आसमानों में है, जो भी जमीन में है, लगता है जैसे पूरी सूरत का एक कंक्लूजन यहाँ पे बयान हो रहा है, सब देखो अल्लाह का ही है। और देखो उस अल्लाह की कुदरत कैसी है, वा इन तुबदु मा फी अनफुसिकुम औ तुखफूहु युहासिबकुम बिहिल्ला। अगर तुम जाहिर करोगे जो भी तुम्हारे नफ्सों में है, जो तुम्हारे दिल में छुपा हुआ है ना, उसको अगर जाहिर करोगे या उसको छुपा के रखो, अल्लाह ताला तुम्हारा हिसाब लेगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम के लिए ये चीज इतनी सख्त परेशानी का बाइस थी। क्यों थी परेशानी? सहाबा इसलिए घबरा गए कि ठीक है, एक तो हम अमल करते हैं, जो हम मतलब कुछ आपने कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ बोला, कोई चले, कहीं बैठे, कहीं उठे, कोई काम किया, वो तो सारे हमारे आमाल हैं, उनकी तो समझ आती है कि इनका हिसाब होगा, मगर दिल की बातों का भी मुहासबा होगा। अब दिल में तो बाज़ दफ़ा हमारे ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं जिन पे हमारा बस ही नहीं होता, हम पता नहीं क्या क्या दिन में देखें कितने ख्यालात इतने क्विकली आते हैं दिल के अंदर और चले जाते हैं, दम जैसे बिजली किसी तेजी होती है ना, उससे भी ज्यादा तेजी से दिमाग में ख्याल आते हैं। तो उनके ऊपर भी अगर अल्लाह ने हिसाब करना शुरू कर दिया तो हमारा बनेगा क्या? तो वो तो बहुत घबराए, इसलिए वो जो कुरान को लेते थे ना बहुत सीरियसली लेते थे, हमारी तरह नहीं कि बस सुन लिया और सुन के उसके बाद हमने कौन सा कुछ करना है तो कर ले अल्लाह हिसाब, नहीं, वो अपने आप को हर आयत के आगे खड़ा कर लेते थे कि ये आयत मेरे लिए ही है, मेरे लिए नाजिल हुई है, और कोई हुक्म अगर मुश्किल लगता था तो घबरा उठते थे, उनको फिक्र पड़ जाती थी अब इस हुक्म को कैसे पूरा करेंगे हम, हमने जो पूरा करना ही नहीं होता तो फिर हमें फिक्र की क्या बात है, और हिसाब किताब को तो वैसे ही हम भूले रहते हैं, तो अगर हिसाब होगा भी तो चलो होगा ही, जहाँ पे और लोग देंगे हम भी दे देंगे, हमारी तो ये अप्रोच होती है ना, उनकी ऐसी नहीं थी। तो इसलिए वो तो दौड़े दौड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, घुटनों के बल गिर गए, अर्ज की आप ही आयत नाजिल हुई है और हम इस हुक्म की कहाँ ताकत रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह कहना चाहते हो जैसे यहूद और नसारा ने तुमसे पहले कहा था कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, समय ना वा सही ना, ये तुम कहना चाहते हो कि हमसे तो नहीं होता ये, बल्कि तुम ये कहो समय ना आता ना, हमने सुना हमने मान लिया, परवरदिगार हम आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, हम आपकी तरफ लौट जाना चाहते हैं, हमें आपकी तरफ लौट के जाना है। तो सहाबा ने फिर यही जुमला दोहराना शुरू कर दिया और इससे उनकी जुबानें तर हो गईं। तो तब अल्लाह ताला ने उसके बाद ये जो अगली आयत है ना ये उतारी, लेकिन तकरीबन एक साल तक, ये एक साल बाद ये आयत उतरी। तो फिर आप देखें कि उस वक्त तक सहाबा कराम के ऊपर बड़ा बोझ था कि अब क्या करें, हम दिलों की बातों पे भी अगर जो है ना पकड़े जाने लगे तो हमारा होगा क्या। पहले तो ये देख लेते हैं कि इंसान दिल में बातें छुपाता क्यों है। इसलिए कि इंसान समझता है कि अगर सारी बातें लोगों के सामने मैंने ओपन कर दी ना तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, लोगों की नज़रों में मैं गिर जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने यही एहसास दिलाया कि लोगों की नज़रों में इज्जत पाने के लिए तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम्हें अगर फिक्र करनी है तो इस बात की फिक्र करनी है कि अल्लाह की नज़रों में क्या तुम्हारी इज्जत है, वो तुम्हारे अंदर की बातों का भी जानने वाला है। तुम अंदर की बातें लोगों से छुपा के उनसे बच सकते हो लेकिन अल्लाह से नहीं बच सकते। तो अल्लाह ताला की कुदरत यहाँ से पता चलती है कि दिल के अंदर छुपी है ना, जिसको कहते हैं अलीमुम बिज़ात सुदूर, अल्लाह ताला सीनों के अंदर 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 बहुत गहरे अंदर, लेकिन इंसान का सीना भी एक ओशन की तरह है ना, एक समंदर की तरह, उसके अंदर कोई बात जाके छुप जाती है फिर वो बात किसी को भी नहीं पता होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ये देख लो कि किसी को भी ना पता चले तुम्हारे दिल पे मेरा इख्तियार है, मेरे नोटिस में तुम्हारे दिल की बातें आ जाती हैं। देखें दिल की बात ऐसी होती है, बाज़ दफ़ा ना मां जानती है, ना हस्बैंड जानता है, ना बहन भाई जान सकते हैं, ना मोहब्बत करने वाले जान सकते हैं, किसी के दिल में क्या है कोई नहीं जान सकता, या इंसान खुद जानता है या उसका रब जानता है। तो अल्लाह ताला ने कितना क्लोज रिलेशनशिप दिया कि कितना करीबी ताल्लुक है अल्लाह का तुम्हारे साथ, कैसा रिश्ता बताया कि देखो या तो तुम खुद अपने बारे में जानते हो या मैं जानता हूँ, क्या ऐसा गहरा रिश्ता कहीं और तुम कायम कर सकते हो। कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि मेरे दिल में जो है ना मैं कुछ भी ना बोलूँ, बगैर बताए ही दूसरे को पता चल जाए। ऐसा होता है ना, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं आपका बाज़ दफ़ा दिल नहीं चाहता कि मैं कुछ बोलूँ, बस इनको पता चल जाए, खुद ही पता चल जाए, आप ज़ुबान से कहना नहीं चाहते लेकिन नहीं पता चलता, इसलिए कि उनकी रीच हमारे दिल तक है ही नहीं। हाँ अल्लाह की रीच है, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया कि जो रिश्ता मेरा और तुम्हारा है ना वो किसी और का नहीं है, असल रिश्ता ही बंदे और रब का रिश्ता है। और फिर देखो जो तुम जाहिर करते हो उसको तो मैं जानता हूं, और जो तुम छुपाते हो, कोई गलती छुपाई, कोई जुर्म छुपाया, कोई गुनाह छुपाया, कोई ज्यादती छुपाई, जिससे तुम छुपा के लोगों की नजरों में अच्छे बने रहो, तो ये याद रखना लोगों से वो चीज गायब है लेकिन मेरे से तो कोई चीज गायब है ही नहीं। तो लोगों की नजरों में तो तुम अच्छे बन जाओगे लेकिन मेरी नजरों से गिर जाओगे, क्योंकि मेरे से नहीं कोई बात छुपती। सुभान अल्लाह। तो इंतहाई खौफजदा करने वाली आयत है कि जब युहासिबकुम बिहिल्ला, इसका भी अल्लाह हिसाब लेगा। इसने सहाबा का ये हाल कर दिया कि हम क्या करें, दिल की सोचों पे, दिल के वसवास पे, दिल में जो ख्याल आते हैं इतनी बातें आती हैं, बाज दफा इंसान खुद अपसेट हो जाता है कि ये कैसी बात मेरे दिल में आई है। तो अगर इन बातों पे भी हमारी पकड़ होने लगी तो हम किधर जाएंगे, क्योंकि मेरा दिल तो अल्लाह के सामने तो ओपन है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, एक तो ये यो हासिबकुम बिहिल्ला, हिसाब लेगा अल्लाह, किस किस का हिसाब देंगे, जरा अपने पास्ट में चले जाएं, कब किस वक्त क्या किया, किसका दिल दुखाया, किसके बारे में बुरा सोचा, किसको क्या कहा। हम तो भूल भी शायद जाते हैं, हमें तो याद भी नहीं रहता किसको क्या बात कही थी, अल्लाह ही हिसाब लेगा। तो इस वजह से सहाबा इतने खौफजदा हो गए, वो वैसे भी सहाबा कराम तो इतने ज्यादा इस चीज को के ऊपर वो रखते थे ना, कि एक-एक चीज को इतना सीरियसली लेते थे कि हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास के पास जाके वाकया बयान किया कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इस आयत इन तुब्दू की तिलावत फरमाई और बहुत रोए। तो आपने फरमाया इस आयत के उतरने के बाद सहाबा का यही हाल हुआ था, वो सख्त गमगीन हो गए थे, क्योंकि शैतान डालता रहता है आपके भी मेरे भी दिल में 100,000 ख्याल आते रहते हैं। तो अगर मुहासबा होने लगा, हिसाब किताब होने लगा, तो सहाबा तो बेचारे पहले ही इतना हिसाब किताब से डरते थे कि एक दफा हजरत उमर थे उनके सामने सूरह तकवीर की तिलावत खुद कर रहे थे, बल्कि सूरह तकवीर की तिलावत। तो जब उस आयत पे पहुंचे ना, वाइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, कि जब आमाल नामे खोल दिए जाएंगे, नशर कर दिए जाएंगे, तो बेहोश होके गिर पड़े। अल्लाह उस वक्त क्या हाल होगा, आमाल नामे नशर किए जाएंगे हशर के मैदान। तो कई दिन ऐसी हालत में रहे कि लोगों ने कहा पता नहीं बीमार पड़ गए, इयादत करने आते थे। तो एक दफा कहने लगे, अली मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि क्यामत के दिन मुझे ना मेरी नेकियों का अजर मिले और ना गुनाहों के बदले में मेरी पकड़ो, मेरे लिए यही बड़ी कामयाबी है। मैं ये नहीं मांगता मुझे नेकियों का अजर मिले, बस मेरे गुनाहों पे मेरी पकड़ ना हो। हजरत आयशा का यह हाल था आखरत के खौफ से, कहती थी काश मैं एक दरख्त होती, हर दम तो बस तस्बीह करती रहती और आखरत का मुझसे कोई सवाल ना होता, काश मैं पैदा ही ना हुई होती, क्योंकि उनको हिसाब का इतना डर था ना, हम हिसाब किताब कैसे देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे वो आखरत का इतना उनको खौफ होता था हिसाब किताब का, फरमाते थे अगर मुझे जहन्नुम और जन्नत के मुतल्लिक इख्तियार दे दिया जाए ना, कि मैं इनमें से जिसको चाहूँ पसंद कर लूँ या राख हो जाऊँ, तो मैं राख हो जाना पसंद करूँगा, ताकि मुझसे मेरे आमाल के मुतल्लिक कोई सवाल जवाब ना। तो वो इतना शदीद उनको खौफ होता था इस चीज़ का, हम कैसे इसका जवाब देंगे, हम कैसे वहां पे बताएंगे कि हमने ये काम क्यों किया। तो मुहासबा तो बड़ा सख्त है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे की जो आयत उतरी कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये अगली आयत है ना 286, ये नाजिल हुई तो फिर सहाबा को कुछ चैन आया। तो क्योंकि उनके दिल कांप रहे थे इस बात पे, क्या बनेगा हमारा, तो फिर पता चला कि अच्छा अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वसत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिल में कोई ऐसे ख्याल आते हैं जिनके ऊपर आपका बस ही नहीं है, बस वो ख्याल आया, अब आपने सोचा नहीं था, जानबूझ के नहीं लेकर आए, मगर बस दिल में एक ख्याल आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक हदीस में आता है कभी कभी शैतान जहन में डालता है कि बताओ उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, अच्छा उसको किसने पैदा किया, फिर अल्लाह ताला माँ फरमाए नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला, अल्लाह को किसने पैदा किया, ऐसे कोई यानी बात जहन के अंदर डाल देता है, ऐसी कोई चीज़ें कर देता है, या दीन के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में ऐसी बात कोई जहन में शैतान डालता है ना कि इंसान कांप जाता है खुद से, ये क्या बात मेरे दिल के अंदर आई। तो अब ये देख लेना, इतने बड़े बड़े सहाबा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये अशरा मुबशरा में से हैं, मुआज़ बिन जबल, اور یہ سارے صحابہ آپ کی خدمت میں گئے تو سب اتنے پریشان تھے کہ اللہ کے رسول ہم پہ تو بوجھ ڈال دیا گیا، ہم کیسے اس کو اٹھائیں؟ تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، ایسے خیالات کے اوپر نہیں پکڑ ہوگی، ہاں وہ خیالات جو انسان اپنے دل میں خود لے کر آئے، مثال کے طور پہ ایسی سوچیں، ایسے وسواس، ایسی باتیں جیسے مثلا حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانیاں ہیں، اور ان کو انسان دل کے اندر رکھے چھوڑتا ہے، یا کفر ہے، یا نفاق ہے، منافقت، یہ بھی تو دل کے ہی عمل ہیں نا، دل میں ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر ظاہر ہے پکڑ ہوگی،